बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। गुरुवार को सुनवाई के पहले दिन अदालत में कई घंटों तक बहस हुई। फिलहाल अदालत ने निर्वाचन आयोग के पुनरीक्षण अभियान पर रोक नहीं लगाया है। याचिकाकर्ताओं ने भी अंतरिम रोक की मांग नहीं की थी। कोर्ट में क्या कुछ हुआ इस बारे में बताते हुए एडवोकेट वरुण कुमार सिन्हा कहते हैं,
माननीय न्यायालय के मूड को भांपते हुए पेटिशनर्स ने अपने एसटी एप्लीकेशन को आज प्रेस नहीं किया है और इस तरह से इलेक्टोरल रोल रिवीजन के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का किसी भी तरह का एसटी ऑर्डर नहीं है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे करेगी। रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का बिहार के अंदर वो चलता रहेगा और अगली तारीख 28 जुलाई 2025 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुकर्रर किया है, तब तक सारे पक्षों को अपना जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल करना है और उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगा माननीय न्यायालय अगले तारीख पे तमाम बिंदुओं को विचार करके आगे की कार्रवाई चलेगी।
सर्वोच्च अदालत ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। अदालत के सुझाव को सकारात्मक बताते हुए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव कहते हैं,
कोर्ट ने आज सुझाव दिया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से चुनाव आयोग को कहा है कि या तो 15 दिन में तुम सुधर जाओ, नहीं तो हमें कुछ करना पड़ेगा। भाषा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे विचार से प्राथमिक दृष्टि में न्यायिक संगत यही होगा कि आप आधार कार्ड को स्वीकार कीजिए, अपने एपिक कार्ड को स्वीकार कीजिए, राशन कार्ड को स्वीकार कीजिए, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कारण बताइए कि आप क्यों नहीं करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जीत है उन लोगों के लिए जिन्होंने बार बार कहा था कि वोट बंदी का खतरा है।
योगेंद्र यादव का कहना है कि चुनाव आयोग को कुछ जरूरी सवालों के जवाब देने होंगे जिसे देने से वह बचता रहा है।
अब चुनाव आयोग को बताना होगा कि भाई आधार कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, राशन कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, अपना ही एपिक कार्ड क्यों नहीं स्वीकार करें, और ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो लोग ऑलरेडी वोटर लिस्ट में थे उनमें से एक भी व्यक्ति बाहर न जाए। जस्टिस बागची ने बार बार कहा कि अगर एक भी व्यक्ति बाहर रहता है तो आपको उसको सुनवाई करनी होगी, उसको चिट्ठी देनी होगी, आपको पूरा करना होगा, ये सारा काम आप कैसे कर सकते हो। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश के सामने जो तलवार लटकी हुई है उस पे सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तरह से पहली ब्रेक लगा दी है।
5 देशों की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट आए हैं। भाजपा ने इन यात्राओं को बेहद सफल बताया है। भारत की विदेश नीति की सराहना भारतीय जनता पार्टी ने की है। 5 देशों में से 4 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना नागरिक सम्मान दिया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इसे भारत की ताकत और सम्मान बताते हुए कहते हैं,
भारतीय परंपरा में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये विश्व के आकाश पर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 27 सम्मान मिले हैं, ये विश्व के आकाश पर भारत के उभरती हुई शक्ति, भारत की उभरती हुई स्वीकार्यता के 27 ज्वाज्वल्यमान प्रतीकों की तरह है। जिसे अगर एक पंक्ति में मैं कहूं तो मोदी जी की इस यात्रा का संदेश सारगर्भित है, ये आदर है भारत का जो भारत के जन जन को समर्पित है।
मोदी सरकार की विदेश नीति को प्रभावी बताते हुए सुधांशु त्रिवेदी का कहना है,
आज भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस नए स्वरूप में आगे बढ़ रहा है। ब्रिक्स समिट हुई, एक दौर था हमारी सरकार आने से पहले जब ब्रिक्स में भारत को वीकेस्ट पॉइंट माना जाता था, टुडे इंडिया हैज बिकम द ब्राइटेस्ट पॉइंट इन ब्रिक्स। हम विश्व के एकमात्र देश हैं जो ब्रिक्स के भी मेंबर हैं और क्वाड के भी मेंबर हैं। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति अब एक नए युग में प्रवेश कर गई है। किसी जमाने में हम गुट निरपेक्ष हुआ करते थे, आज हम विश्व में सर्वसमावेशी की तरफ बढ़ रहे हैं।
हालांकि विपक्ष सरकार की विदेश नीति पर लगातार सवाल उठा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों पर तंज कसा है।
पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मैग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो, और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा वार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ, जेसीबी चल रही है, जेसीबी हो।
और अब चर्चा गुजरात की, जहां वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाली एक पुल ढह गई है। इसमें 17 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग अभी भी लापता हैं। सरकार ने शुरुआती कार्रवाई करते हुए 4 इंजीनियर्स को निलंबित कर दिया है। गुजरात में पिछले 4 सालों में पुल ढहने की कम से कम 6 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताते हुए मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस सेवा दल के लालजी देसाई ने राज्य की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
गुजरात का ये जो नया मॉडल है, इनको विकास का मॉडल कहते हैं, हम जिनको मोदानी मॉडल के नाम से जानते हैं, रोड का टूटना, पुल का टूटना, केनाल का टूटना, डैमों का टूटना, ब्लास्ट होना और अग्निकांड होना, ये बहुत मतलब एक स्वाभाविक हो गया है। लोग कहते हैं कि पुल कोलैप्स हुआ, ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, वहां ब्रिज सिर्फ कोलैप्स नहीं हुआ है, पूरा का पूरा गवर्नेंस कोलैप्स हुआ है।
गुजरात के बाद चर्चा मध्य प्रदेश की, जहां इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून ने जमकर बारिश कराया है। राज्य में अगले 4 दिनों तक अधिक या बहुत अधिक बारिश होने की आशंका है। इससे बाढ़ आने की भी आशंका जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल जैसे राज्यों में इस बार बारिश ने काफी तबाही मचाई है। इस बीच केंद्र सरकार ने असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल और उत्तराखंड को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इन राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते भारी तबाही हुई है। केंद्र सरकार 1,000 करोड़ से अधिक की धनराशि आर्थिक मदद के रूप में इन राज्यों को देने जा रही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।